الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوا تھا کہ یہ انسانیت پر عظیم نعمت ہے، اور آنے والا مہینہ ربیع الاول یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر لو، آپ کی اطاعت اور اتباع کرو. آج کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق ہم شمار کریں گے، اور اس نیت سے ان کا تذکرہ مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ایک دو نہیں. ان حقوق کو جاننا بھی ضروری ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. چنانچہ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغامبر مانیں کہ اللہ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. یہ ایمانی رشتہ، یہ ابتدا ہے، سب سے پہلی چیز ہے. ایک انسان ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی صداقت کی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا، تو آخرت میں اس کی نجات نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اقرار کرنا ضروری ہے کہ میں نے زبان سے بھی، دل سے بھی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانا ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پہچان حاصل نہ ہو جائے. آخر اس ذات با کرامات پر ایمان کیسے لائیں گے جب اس کے فضائل، اس کی صفات، اس کی پہچان ہمیں معلوم نہیں ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا چیز ہے، کیسی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کے اور دیگر اسما کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، بلکہ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ ایک بہت عظیم محدث گزرے ہیں، خود ہمارے پاکستان میں، اور وہ اتنے بڑے عالم کہ انہوں نے احادیث کی بڑی بڑی شروحات لکھی ہیں، اور انہوں نے عربی قصائد لکھے ہیں، عربی زبان کے ماہر. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام جمع کیے، اسماء حسنہ کے علاوہ اور بھی نام اللہ تعالیٰ کے روایت کیے جاتے ہیں، اور ایک قصیدہ عربی کا لکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 300-400 نام جمع کیے ہیں. एक कसीदे का नाम है कसीदतु तूबा और दूसरे का नाम है कसीदतुल हुस्ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे नाम हैं। मौलाना मूसा रूहानी अलबाजी का तذکرہ चला, अल्लाह वालों के जिक्र से रहमत नाजिल होती है। ये उन बुजुर्गों में से हैं कि जब इनको दफन किया गया तो इनकी कब्र से खुशबू फूटी है। जैसे कि पाकिस्तान ही में मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, आप में से बाजों का लाहौर से शायद ताल्लुक भी हो, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह उनकी कब्र से भी खुशबू फूटी है। तो ये उन अल्लाह वालों में से हैं जिनकी महबूबियत और मकबूलियत अल्लाह ताला ने जो आसमानों में थी दुनिया पर जाहिर की। बहरहाल तذکرہ ये चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी, आप मोहम्मद हैं, आप अहमद हैं, आपका नसब नामा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और आपकी वालिदा का नाम आमीना है। इन चीज़ों को जानना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पा सआदत मक्का मुकर्रमा में हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 50 से ज़्यादा साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे, 53 ईयर्स, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई और 10 साल अपनी उम्र अजीज़ उम्र मुबारक की के 10 साल वहाँ गुजारे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा किया है, पर्दा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल बहक हुआ है, इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए हैं। तो ये चीज़ें जानना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, हाशिमी हैं, कुरैशी हैं, बनू हाशिम और कुरैश में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीहुल लिसान, अरबी जुबान बोलने वाले, आप अली सलातु वसलाम शायर न थे, हालांकि उस जमाने में बच्चा बच्चा शायर हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को अरबी अशआर के दीवान पूरे पूरे याद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती भी थी। सहाबाए किराम में ये चीज़ चलती थी, बल्कि अरबों का तर्ज ये था कि रात को अक्सर सफ़र करते, दिन को गर्मी होती थी तो रेगिस्तानों का सफ़र रात को तय करते थे, और जब सफ़र करते थे तो उस वक़्त उसको कहते हैं हद्दा, उर्दू में कहते हैं हुदी खां। तो हद्दा जो होता था वो कसायद पढ़ता था, अशार पढ़ता था, तो सुनने वाले भी महजूज होते और जो ऊंट होते तो उनको भी जोश आता, वो अशार के वजन की बिना पर ऊंट तेज दौड़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुदी खां कौन था? हजरत अंजशा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदी खान थे और ये हद्दा थे, ये अशार पढ़ते थे। और एक मौके पर ऐसे हुआ कि बड़े जोश से हजरत अंजशा रदी अल्लाह तआला अन्हु अशार पढ़ रहे हैं, और इतना उम्दा अंदाज और इतने जोश से अशार पढ़ रहे हैं, इतने वालेहाना अंदाज से कि हुजूर अली सलातु वसलाम ने फरमाया कि अली का बिल कवारीर, अंजशा ज़रा ख्याल रखना, ये जो शीशियां हैं, शीशे की बोतलें, ये जो सवार हैं इनका ख्याल करो। मुराद ये है कि इन सवारों पर, इन ऊँटों पर ख़वातीन भी सवार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इन अशार से इनके दिल पर ही असर हो जाए। और या फिर इसकी तशरीह यूं की गई है कि ये ऊँट इतने जोश में आ जाएं कि ये सवारियां ऊपर से गिर जाएं, ये ऊंट इतना तेज दौड़ने लगें कि ऊपर से सवारियां गिर जाएं और उनको नुकसान पहुंच जाए, इसलिए थोड़े आराम से अशार पढ़ो। तो कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हम उम्रा पे हाजिरी हुई हरमैन की, तो हमें मौका मिला कि हम ताइफ से आगे उस इलाके की तरफ जाएं जहां हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला ने, बनू साद का इलाका पहाड़ों में, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपना गुजारा और रजात की मुद्दत पूरी की गई, और वहां अरब अपने बच्चों को बेचते थे ताकि वहां की साफ आबो हवा और वहां की साफ सलीस अरबी जुबान सब बोलते थे, तो बच्चों को वहां भेजा जाता था। तो हलीमा सादिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हैं, उन्होंने वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। तो उस जगह को देखने और वहाँ की जियारत का मौका मिला। तो इस वक्त तो वो खुला मैदान है, वो इलाका पहाड़ों के दरमियान, और मक्का की तरह नहीं, बल्कि वहाँ का माहौल ताइफ और उससे आगे का माहौल जरा ठंडा ठंडा है। तो वहाँ आबादी भी नहीं है इस वक्त, सड़क लबे सड़क वो थोड़ा सा हिस्सा है, हमें दिखाया गया कि ये हिस्सा है, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया का मकान था। तो अब तो वहाँ मकान नहीं है, रेगिस्तान है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आगे पीछे सब अशआर, बच्चा बच्चा अशआर जानता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शायर नहीं बनाया ताकि कोई ये ना कह सके कि ये कुरान करीम, ये अहादीस, ये तो फन शायरी से मुतालिक है, बल्कि कुरान ऐसा कलाम है जो ना शेर है ना नसर है, बल्कि उसमें शेर और नसर के तमाम कमालात भी मौजूद हैं, और वो दुनिया के नसर और अशआर से ऊंचे ऊंचा कलाम है, उसका कोई जोड़ नहीं। इसलिए कि कुरान करीम इस दुनिया में से है ही नहीं, ये अल्लाह ताला का अपना कलाम है, ये अल्लाह ताला की सिफत है, ये कदीम है, इसकी इब्तिदा नहीं, इसकी इंतहा नहीं। नुजूल का तो वक्त है कि फलां जमाने में कुरान करीम को लोहे महफूज से समाए दुनिया की तरफ लाया गया शब कदर में, और फिर 23 साल की मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके आला मकसिन व नज़्वरतलनाहु तरतीला, थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला ने उतारा है, तंजील का सिलसिला चला है, और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर की तरफ मुंतकिल किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तबलीग की है, लेकिन ये कलाम अज खुद ये कदीम है, ये अल्लाह की सिफत है। बहरहाल अर्ज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, अरबी लिसान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना है, ये चीज़ें जानना, आप अरबी हैं, आप मोहम्मद हैं, आप अहमद हैं, आप आकिब हैं, आप माही हैं, आप हाशिर हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा में से हैं, ये चीज़ें जानना, ये चीज़ें मानना, आपकी ज़ात को जानना, आप कौन थे, आपने 40 साल की उम्र तक मक्का वालों में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और मक्का वालों ने इसकी तस्दीक की है कि आपकी ज़ुबान से कभी कोई झूठ नहीं निकला, आप शरीफ उत्तबा थे, आप मोहताजों की और हाजतमंदों की ज़रूरत पूरा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों पर बेवाओं पर तरस खाते थे, दूसरों का गम अपना गम बनाते थे, मुसीबत जदों की मदद करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात आलिया, अखलाक आलिया का अल्लाह ताला ने पूरे मक्का वालों को और उससे आगे सबको गवाह बनाया, सबको यकीन था कि ये शख्सियत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये ऐसी मुबारक शख्सियत है कि आपकी जुबान से कभी कोई झूठ सादिर नहीं हुआ, आपके अखलाक, आपका अंदाज, आपके अतवार, आपका रहना सहना, उठना बैठना मक्का वाले देख चुके थे, आपका हिलम, आपकी हिकमत। वो मशहूर वाकया कि काबा, मक्का वालों ने, कुरैश ने सोचा कि काबा शरीफ की मरम्मत करने की जरूरत है, इसकी दीवारें बोसीदा हो रही हैं, तो उन्होंने आपस में चंदा किया और पैसा जमा किया, और इतनी रकम जमा ना हो सकी कि जिससे काम मुकम्मल हो सके, इतनी हलाल और पाकीज़ा उनके पास जो आमदनी नहीं थी, तो उन्होंने इसका एहतियात किया, जिसमें हमारे लिए भी इबरत का सामान है कि मुशरिकीन ने मक्का को तो इसका ख्याल हो कि उनकी आमदनी जो अल्लाह के घर में लगनी है वो पाकीज़ा हो, और हमें ख्याल ना हो, हमें भी ख्याल होना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने ये रकम जमा की और फिर काबा शरीफ की मरम्मत की, और हतीम का हिस्सा बाहर छोड़ना पड़ा, असल में ये भी काबा शरीफ का हिस्सा है, और काबा शरीफ की दीवारें वहां तक थी, लेकिन उनके पास इतनी रकम न थी, तो उस हिस्से को बाहर छोड़ दिया, और फिर हजरे अस्वद को अपनी जगह पर नसब करने का मौका आया, और इस पर बहस शुरू हो गई। हर कबीला वाले, हर खानदान वाले इस सआदत को अपने लिए चाहते थे कि हमें ये सआदत हासिल हो। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर यहाँ ग्लासगो में कोई बहुत बड़ी मस्जिद बने और उसमें ग्लासगो के जो खानदान हैं सब उसमें, बड़े बड़े खानदान जो हैं सब उसमें हिस्सा लें, और फिर उसके इफ्तिताह के लिए किसी एक ही को आगे किया जाए, तो जाहिर है कि किसी के दिल से ये बात गुजर सकती है कि हमने भी इतनी ही मेहनत की थी। अगरचे ये बात भी अपनी जगह पर याद रखने की है कि मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में मकान बनाते हैं। तो इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि इसमें शर्त है मन बना लिल्लाही मस्जिदन, मस्जिद अल्लाह के लिए बनाई जाए। और बाज़ उलमा ने इसकी तसरी की है, हमारे पाकिस्तान में तो लोग कतबों के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं कि फलां साहब ने इतनी इतनी रकम दी थी और फलां साहब ने इतनी रकम दी थी। अगर अल्लाह के लिए दी थी तो लिखने की क्या जरूरत, किसको दिखा रहे हो, नेकी करो और दरिया में डालो, तो इसलिए ये मकसद तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल कुरैश में बहस शुरू हो गई कि ये सआदत किसको हासिल हो, ये पत्थर को अपनी जगह पर हजरे अस्वद को नसब करना है। हर खानदान इस सआदत को अपने लिए चाहता था और करीब था कि ये जो बहस और मुजादला चल रहा है ये बाकायदा लड़ाई और झगड़े की शक्ल ना इख्तियार कर ले। इतने में आपस में कुरैश ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अभी हरम में जो कदम रखे उसको हकम बना लेते हैं, अभी जो आए उसी को कहते हैं कि तुम फैसला करो हमारे दरमियान। अल्लाह का करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए तो मौजूद हाजिरीन ने देखा कि ये तो मोहम्मद हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं, और सब खुश हो गए, सबको इत्मीनान हो गया कि इससे बेहतर कोई शख्स नहीं। ये नबुवत और बेसत, ये बेसत से पहले का ज़माना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीमाना तजवीज़ बताई कि एक चादर को नीचे बिछाओ, उसके अब ऊपर पत्थर को रखो और चादर का एक एक किनारा एक एक तरफ से हर कबीले का सरदार, हर कबीले का नुमाइंदा उठा ले। तो इस तरीके पर सारे कबाइल जो हैं उनको इस सआदत का हिस्सा मिल जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ, सब ने एक एक किनारा पकड़ा, एक एक हिस्सा पकड़ा और पत्थर को जगह से उठाकर उस जगह तक ले जाया गया। अब जो आखिरी मरहला था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अंजाम दिया, पत्थर को अपने दस्ते मुबारक से उठाया और उसकी जगह पर उसको नसब किया। तो ये तो हाल था मकबूलियत और महबूबियत का और हिकमत अमली का बेसत से पहले। और हया का ये आलम था कि मक्का में एक मेला होता था और उस मेले में लोग जमा होते थे। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि वहाँ तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन तशरीफ़ क्या ले जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म की बेहोशी तारी हो गई, वहाँ जा ही ना सके, पहुँच ही ना सके। एक मौके पर जब काबा की मरम्मत हो रही थी, उसी ज़माने में अरब में हया नहीं थी और बेहयाई की बात थी, और इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मरम्मत में हिस्सा ले रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपने कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। तो चचा ने, अबू तालिब ने सोचा कि इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नरम व नाजुक जवानी के का आलम है और नरम व नाजुक बदन है और कंधे के ऊपर पत्थर रखा जा रहा है तो खराश ना आ जाए, तो इसलिए अबू तालिब ने ये तजवीज़ दी कि ये जो इजार है इसको खोल कर कंधे पर कपड़ा रख लो ताकि कंधे पर खराश ना आए, और इजार खोलना चाहिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। तो हया का तो ये आलम था और शराफत का ये आलम था और मकबूलियत और महबूबियत और दानाई का ये आलम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदा में ये हुक्म होता है कि पहले अपने खानदान को तबलीग कीजिए। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, जबल नूर में एतिकाफ और इबादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे और वहाँ लंबी मुद्दत गुजारते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कुछ दिनों का खुर्द नोश का सामान, सादा सा हल्का फुल्का साथ ले जाया करते थे। हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला ना ले जाया ले, ज, ले वहाँ पहुँचा देती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुले माहौल में जहाँ सर्दी भी ज़्यादा होती है जब हो और गर्मी भी खूब होती है, हाँ बगैर किसी राहत के सामान के गारे हिरा में कई कई दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। और एक कशिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तड़प थी कि मैं अपने रब से मिलूं, अपने रब का कुर्ब हासिल हो। اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور جاننے کی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی ولایت کے اونچے مراتب پر فائز ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے گمراہ ہوں معاذ اللہ اور بعد میں ہدایت پر آئیں، کبھی کسی نبی نے شرک نہیں کیا۔ انبیاء کا اللہ سے تعلق بعثت سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ بعثت کہتے ہیں اس مرحلے کو جس میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں نبوت دی جاتی ہے اور تم اپنی قوم کی طرف جاؤ، ان کو نبوت کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ لیکن بعثت سے پہلے کا زمانہ بھی بزرگی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی کہ یہ ستارہ ہے، یہ رب ہے، اور پھر جب ستارے چھپ گئے تو کہا کہ یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھا تو اس کو کہا، سورج کو دیکھا، تو معاذ اللہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ نہیں تھا۔ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا رب نہیں سمجھا۔ یہ تو خود قرآن کہتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيم، اللہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف منسوب کر کے کہ یہ تو ہماری اتمام حجت، ہماری حجت، حجت بازی کا طرز ہم نے سکھایا ابراہیم کو، یہ ہماری حجت تھی، یہ ہمارا علم تھا جو ہم نے ابراہیم کو دیا کہ اپنی قوم کو اس طرح سمجھاؤ کہ تم تو کہتے ہو نا کہ سورج جو ہے یہ رب ہے، تو یہ دیکھو نا سورج ڈوب گیا، اب رب کہاں گیا تمہارا؟ رب تو وہ ہے جو ہر وقت موجود رہے، یہ ہے چاند، یہ ابھی ہے، ابھی نہیں ہے، یہ ستارے ابھی نہیں ہیں، ابھی ہیں، ابھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو رب تو وہ ہو جو قادر مطلق ہو اور اس کی صفات میں فتور نہ ہو۔ تو یہ تو سمجھانے کا انداز تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپنے سے ہی موحد تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعثت سے پہلے بھی ولایت کے اونچے مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اور کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس مقام تک ساری زندگی میں نہیں پہنچ سکتا جو مقام انبیاء کو بعثت سے پہلے حاصل ہے، اور جو بعثت سے بعد حاصل ہے تو وہ تو پھر ورا الورا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے، اور حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچا جیسے کسی کو معانقہ کرتے ہیں، اور دبایا، اور اتنا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے، اور فرمایا کہ میں ما انا بقارئ، قرآن کریم کی آیات پیش کی گئیں کہ ان کو پڑھو، تو میں انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی اللقب، ایسے امی کہ جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن دنیا کے مدرسوں کو آباد کر دیا اپنی تعلیمات سے، انسانیت کو مہذب بنا دیا، انسان بنا دیا، اللہ کا بندہ بنا دیا، حکومتوں کو چلانے کا طرز سکھا دیا، خاندانی زندگی سکھا دی، معاشرت اور معاملات سکھا دیے، تو ثقافت سکھا دی، تہذیب سکھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ بینچا، تیسری مرتبہ بینچا، اور پھر وحی کے کلمات جاری ہو گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ابتدا میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ بینچنا کیسا؟ تو علماء نے اس کو عجیب انداز سے سمجھایا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جبریل امین نے روحانیت منتقل کی ہے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں، اور اس بینچنے سے جتنے بھی مراتب تھے وہ ایک ہی موقع پر، اس تین مرتبہ بینچنے سے وہ سارے طے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہیں، اور معراج کی رات میں ایسے مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں جبریل بھی نہ پہنچ سکے۔ تو یہ انتقال نسبت، انتقال روحانیت تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان کو دعوت دیں۔ سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، بلکہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، اور پھر بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور फिर मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला हूँ। तो इस तरह करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का सिलसिला शुरू फरमाया। बहरहाल मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से पहला हक ईमान है, और ईमान लाने के लिए आपको जानना भी जरूरी है कि आप कौन थे। देखो, आपने किसी से दोस्ती करनी है तो पहले तारुफ होता है ना, अगर तारुफ ही ना हो तो दोस्ती क्या की जाएगी? किसी नई जगह पर आप जाते हैं, किसी से पहली मुलाकात होती है, तो आप क्या पूछ रहे हैं? आपका नाम क्या है, आप पीछे से कहाँ से आपका ताल्लुक है, आपके कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना। तो क्यों पूछे जाते हैं? ताकि अगर दोस्ती करनी है और निभानी है तो तारुफ जरूरी है। ऐसा तो नहीं होता कि अजनबीयत भी रहे और दोस्ती भी रहे। तो ये अगर एक आम दोस्ती के ताल्लुक के लिए जरूरी हो सकता है, तो क्या ईमानी ताल्लुक के लिए जरूरी नहीं होगा कि हमें पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कहाँ तशरीफ लाए, आपका खानदान, आपके अखलाक, आपके आदाब। तो बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से एक हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। अब आगे के हुकूक जो हैं वो तो अगली मजालिस में, लेकिन ईमान के बारे में एक दो बातें अर्ज करता हूँ। देखो, हम पढ़ते हैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस कलमे में जो पहला हिस्सा है ये पैगाम है दूसरे हिस्से का। क्या मतलब? कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, ये तौहीद का पैगाम है, ये कलिमा ये तौहीद का पैगाम है। और आगे क्या पढ़ते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं। तो अगर रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं तो पैगाम क्या है? यही पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्ला पैगाम है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पैगाम को लाए हैं। तो ईमान का मतलब यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान लाए। हम जब पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाथ बाद अल मौत, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर और आखिरी दिन पर और तकदीर पर, अच्छी बुरी सब अल्लाह की तरफ से है, और आ, आ, मौत के बाद जिंदगी पर, वल बाथ बाद अल मौत, के दोबारा जी उठना है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्री खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला वल बाथ बाद अल मौत। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो ये ईमानियात का शुमार है ना। तो जब हमने रसूलुल्लाह को रसूल माना तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गईं, उसमें शामिल हो गईं, किताबें भी शामिल हो गईं, कुरान भी शामिल हो गया, आप अली सलातु वसलाम की लाई हुई शरीयत भी शामिल हो गई। हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माईही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा कि वो है, कमा हुआ बि अस्माईही व सिफातिही, अपने नामों के साथ और अपनी सिफात के साथ, अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं, अस्माए हुस्ना, और अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उन सिफात के साथ, कमा हुआ भी अस्माई व सिफात ही, अल्लाह ताला जान हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, अल्लाह ताला सुनता देखता है, अल्लाह ताला कलाम फरमाते हैं, और अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जो हैं वो इरादा करते हैं, तदबीर करते हैं, खालिक व मालिक हैं। तो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं उन पर ईमान लाना। तो कमा हुआ भी अस्माई व सिफाती व कबिल तो जमी अहकामी, और मैंने अल्लाह ताला के तमाम अहकाम कबूल किए, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान से भी इकरार करता हूँ, दिल से भी तस्दीक करता हूँ। तो हम ये जब कलिमात पढ़ते हैं, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, तो इनमें ईमानियात का जो तज़किरा होता है वो सारा असल में शरह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम लाए हैं। तो ईमानी ताल्लुक इस बात को मानना है और इसका इकरार करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो कुछ आप लाए हैं मैंने उस सब को कबूल किया, उस सब को माना है। अब जब मान लिया तो उसके बाद फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला तो कसम खाकर फरमाते हैं कि फला व रब्बिक, तेरे रब की कसम, और तेरे रब की कसम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुझे हकम न ठहराएं अपने आपस के मुशाजरात में, मामलात में। फिर ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. تیرے فیصلے سے ان کے دل میں ادنا سی تنگی بھی نہ ہو اور وہ پورے طور پر سر تسلیم خم ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پورے اطمینان سے قبول کر لیں. تو ایمان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اچھا کہیں وہ اچھی ہے, جس کو برا کہیں وہ بری ہے, جس کو حلال کہیں وہ حلال ہے, جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے. اس میں پسو پیش نہیں ہماری طرف سے کہ کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ منافق کی شان ہے, اور جو دنیا میں کرتا ہے اس کو قبر میں بھی جواب دینا نصیب نہیں ہوگا. فرشتے سوال پوچھیں گے تو کہے گا حدیث میں ہے کہ اس کی زبان سے ایسی ہی آواز نکلے گی آ آ, اور یہ کہے گا کہ دنیا میں لوگ کچھ کہتے تھے, اس کو توفیق نہیں ہوگی. تو میری بہنوں, میری ماؤں, اس کی یہ جو ایمان ہے اس کا تعلق دلی تصدیق سے ہے. ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر کسی دینی بات پر عمل نہیں کر رہے تو ہم اس کو اپنی کمزوری پر محمول کریں. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ شریعت بڑی اوکھی ہے اور مشکل ہے اور اس میں ہمارے لیے ڈیفیکلٹی پیدا کی گئی ہے, بلکہ معاملہ اس سے الٹ ہے. دین میں تو آسانیاں ہیں اور دین میں ہمارے لیے رحمت ہے اور یہی حق ہے. ہم اگر عمل نہیں کرتے تو یہ ہماری اپنی نالائقی ہے اور کمزوری ہے, ورنہ ایمان میں گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے دل کی گہرائیوں سے, صمیم قلب سے, بالکل اطمینان سے, یہ دل سے بھی زبان سے بھی ہمارا اقرار ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ کی شریعت کامل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, اور ہم اسی کو حق مانتے ہیں. اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے, نہ کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. جتنا ہے اتنا ہی ہے, اتنا ہی رہنا ہے, اور اسی میں ہم نے زندگی گزارنی ہے, اسی میں ہمارا جینا مرنا ہے. تو پہلا نمبر تو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایمان, اور میں نے عرض کیا کہ ایمان کے لیے کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں آگے اور حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, واشهد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب الیک. اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.